ओम शांति। वर्तमान समय जब हम यज्ञ को देखते हैं एक संस्था के रूप में, वट वृक्ष के रूप में इतने सारे देशों में फैला हुआ है और सेवाओं का विस्तार बहुत ज्यादा है, बेहद में चला गया है। लेकिन जब हम रूट्स को देखते हैं तो जिनके फाउंडेशन के ऊपर, जिनके त्याग और तपस्या के फाउंडेशन के ऊपर ये संस्था या यज्ञ खड़ा हुआ है, तो उनके बारे में तो जितना भी हम उनका गुण गायन करें वो कम है, क्योंकि उनके त्याग और तपस्या के सामने हमारा कुछ भी नहीं है। तो कुछ दादियों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन कुछ दादियों के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत जितना 8 बजे तक हम सुन पाए, समझ पाए, तो वो देख लेते हैं आज। ये कौन है पता है? कौन है? कौन है? यशोदा माँ, है ना? यशोदा माँ जो दादा लेखराज के धर्म पत्नी थे, और उनके जो त्याग है बहुत ही ज्यादा है। क्यों बहुत ही ज्यादा है? तो आप मान सकते हैं कि उस जमाने में 1930s की बात है, 20s की बात है, जो घर की गृहिणी होती थी वो एक मालकिन के रूप में, और घर पूरा उसका होता था। जो पुरुष होते थे तो बाहर वो नौकरी के, इसके बिजनेस के लिए जाते थे, पूरा घर वो अपना मानती थी। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, पाठ बदला, दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा बने, शिव बाबा का अवतरण ब्रह्मा बाबा के तन में होना शुरू हुआ, तब से फिर बहुत सारे भाई बहने उनके घर आने लगे, और जो जिनको वो पति मानते थे, और अभी उनका रोल बदल रहा था, तो उनको वो फिर अपने दृष्टि को बदलना, पति के दृष्टि को, संबंध को निकाल करके एक श्रेष्ठ दृष्टि रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, एक तो, और दूसरा उनके घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो उनके उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप मान सकते कि आपके घर में कोई ऐसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल उनका नहीं है, तो आपको कैसे फील होता होगा? लेकिन यशोदा माँ ने उस बाबा को इतना गहराई से समझा, तो फिर क्षण में उन्होंने अपना जो मोह है उन्होंने त्याग किया। तो इसीलिए कह सकते उनका बहुत बड़ा त्याग रहा है इस यज्ञ की स्थापना में। और ब्रह्मा बाबा समान यशोदा माँ भी, बहुत उनका रॉयल संस्कार था, लौकिक में भी बहुत रॉयल संस्कार था, कभी भी वो अपने बच्चों को नहीं डांटते थे, बहुत प्यार से सभी बच्चों को वो चलाते थे। एक प्रसंग ऐसा आता है जब ऐसे एक ब्रह्मा बाबा ऐसे घर के वरांडा में ऐसे बैठे थे, और यशोदा माँ की जो मदर है, उनकी माँ है, वो आते हैं यशोदा माँ से मिलने के लिए, और ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं कि यशोदा तुम्हारे स्टेप मदर आए हैं तुमको मिलने के लिए। फिर यशोदा माँ को लगा कि ऐसे कभी ये शब्द यूज नहीं करते थे, तो आज ऐसा शब्द क्यों यूज किया, स्टेप मदर, सौतेली माँ का शब्द यूज किया तो क्यों? वैसे तो सौतेली माँ थे वो, लेकिन फिर कभी भी उस रीति से उन्होंने ऐसे पालना नहीं दी थी, माँ का ही पालना प्यार दिया था उन्होंने, तो ऐसा शब्द क्यों निकला? फिर बाद में बाबा को महसूस हुआ, ये अरे मैंने तो गलत शब्द यूज कर लिया। फिर वो जो मदर थे तो वो मिल करके जो भी कारोबार था वो करके निकल गए, और बाबा भी निकल गए अपने कारोबार के लिए। फिर जब रात को बाबा वापस आए घर में, और बाबा ने कहा कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, लेकिन यशोदा माँ ने कहा कि क्यों, एक ग्लास दूध तो पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं आज दूध भी नहीं पीऊंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। तो क्यों? तो बाबा ने कहा कि मैं जब आपके जो मदर आई थी तो तब मैंने स्टेप मदर शब्द यूज किया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा, वो गलत था, तो इसीलिए पछतावा, अपने आप को सजा देना है मुझे, तो इसलिए आज भोजन नहीं करूंगा। तो इतना बाबा के पुरुषार्थ देखिए, ये लौकिक जीवन की बात है, तब दादा लेख रहा है, बाबा के अवतरण ब्रह्मा के तन में नहीं हुआ था, उस समय बाबा का पुरुषार्थ इतना ज्यादा था। तो और फिर अगले दिन जब सुबह उठे, फिर यशोदा माँ को बाबा ने बोला कि चलो आपके माँ के घर जाते हैं, वहां रूबरू में उनसे मिल करके मैं माफी मांगूंगा, तब जाकर के मुझे तसल्ली होगी। तो सुबह सुबह यशोदा माँ को लेकर के वो उनके घर ले गए बाबा, और फिर जैसे ही वो घर पहुंचे तो उस जमाने में तो वो जो दामाद है तो वो बहुत भगवान मानते थे ना, उतना रेस्पेक्ट मिलता था, उतना सम्मान मिलता था। अब दामाद जी क्यों आ गए सुबह सुबह? तो फिर यशोदा माँ ने कहा कि आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। तो इनके मदर को बहुत बुरा लगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा जाकर के उनसे माफी मांगे। फिर उसके बाद घर वापस आकर के उन्होंने नाश्ता किया। तो वो पुरुषार्थ जो बाबा के अंदर था और यशोदा माँ के अंदर भी था, वो धारणा बहुत ऊंचे स्तर की धारणा उस जमाने में उन दोनों का था। और ये कौन है? ब्रिजेंद्र दादी। ब्रिजेंद्र दादी कौन है? ब्रिजेंद्र दादी ब्रह्मा बाबा के लौकिक बहू है ना, जिन्होंने जब बाबा का अवतरण हुआ था, शिव बाबा ने पहली बार ब्रह्म बाबा के तन में आए थे, सबसे पहले ब्रिजेंद्र दादी ने उनको देखा था। कहानी सुनी होगी ना सबने, है ना। और ब्रिजेंद्र दादी तो उनके जो घर, जो लौकिक घर था, बहुत संपन्न घर के थे, बहुत ही संपन्न घर के थे। और वो जब छोटे थे तो वो कोई दुकान में अपने भाई के साथ टोपी पहन करके, फ्रॉक पहन करके, टोपी पहन करके अपने भाई के साथ कोई दुकान में कुछ खरीदारी कर रहे होंगे। ब्रह्मा बाबा जा रहे थे तो उस बच्ची को देखा, और उस बच्ची को देखते ही ब्रह्मा बाबा ने ये कहा कि ये मेरे पुत्र वधू बनेगी ये बच्ची, तो उसी समय उन्होंने सोचा था। और जब थोड़े बड़े हुए और फिर ब्रह्मा बाबा उनके भाई के पास, क्योंकि पिताजी नहीं थे ब्रिजेंद्र दादी के, तो उनके भाई के पास उनको बुलाया और उनको कहा कि आपकी जो बहन है तो उनको मैं पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। तो उनके भाई को तो था कि उनको ज्यादा पता नहीं था दादा लेखराज के बारे में, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन वो कितने संपन्न परिवार के थे वो इतना ज्यादा पता नहीं था। तो उसके भाई ने एक शर्त रखी थी, वो शर्त पता है क्या था? तो तीन शर्त थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन जो है ऐसे घर में जाएगी जो जिसके घर में कारपेट बिछा हुआ, वो जमीन पे नहीं चलेगी, कारपेट बिछा हुआ होना चाहिए। तो माना वो घर पूरा कारपेटेड होना चाहिए, उस जमाने की बात सोचिए कि संपन्न, पूरी तरह संपन्न परिवार ही वो कारपेटेड हो सकता है, घर कारपेट होना चाहिए। और दूसरा, मेरी बहन रसोई में काम नहीं करेगी, खाना नहीं पकाएगी, नौकर चाकर होना चाहिए उस सभी के लिए। और तीसरी बात, जब भी उसको बाहर जाना है उसके लिए गाड़ी होना चाहिए। तो ये शर्त था, क्योंकि वो खुद इतने संपन्न परिवार के थे तो ऐसे घर में जाएंगी। तो ब्रह्मा बाबा फिर ऐसे मुस्कुराए। फिर थोड़े दिनों के बाद ब्रह्मा बाबा उनके भाई को निमंत्रण दिया अपने घर में, और फिर सारे दुकान के सारे वो जो एक एक कबर्ड है वो खोल खोल करके दिखाया, कितने चांदी के बर्तन है, चीजें हैं, कितने सोने की चीजें हैं, कितने डायमंड्स है, सब कुछ ये कबर्ड्स खोल खोल के दिखाया। फिर उसके भाई ने क्या, ठीक है मेरी बहन है, अच्छी संपन्न परिवार में ही जाएगी। तो ऐसे संपन्न परिवार की दादी, फिर जब बाबा का अवतरण हुआ तो एक झट में सारा कुछ त्याग किया। तो उस जमाने में आप देख सोच सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक पूरा सोना होता था। हर रोज घर में भी ऐसे साधारण नहीं रहते थे वो लोग, बहू घर के बहू माना तो वो ऐसे साधारण ऑर्नामेंट्स पहने बिना वो नहीं रह सकते थे, है ना। तो वो पहने रखते थे, इतना ज्यादा सारा था उनके पास गहने। लेकिन जैसे ही बाबा में निश्चय उनमें बिठा, उनको बैठा, तो गठरी में एक कपड़े में सब कुछ डाल करके अपना जो भी स्त्री धन था, उनका अपना पर्सनल जो गहने थी, तो सारा कुछ डाल करके बाबा को अर्पण किया, और साधारण कपड़े। हम तो वैसे तो कलयुगी दुनिया के हिसाब से तो अभी तो बहुत साधारण घर के हैं, लेकिन हमारा त्याग तो कुछ भी नहीं है। उनका जो त्याग है, सब कुछ होते हुए सब कुछ अर्पण कर लेना, और बहुत ही और बाद में कैसे साड़ियां पहनते थे। अभी तो हम लोग फिर भी आयरन करके थोड़ा बहुत अच्छे साड़ियां पहनते हैं, लेकिन उस समय दादियों के पास तो कॉटन साड़ियां होती थी, और वो भी आयरन कैसे करते थे दादियां, प्रेस कैसे करते थे पता है, जो वो तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे अपना फोल्ड करके उसके नीचे रखते थे, जब उसके ऊपर सो जाते थे थोड़ा बहुत प्रेस हो जाता था, तो वो ऐसे साड़ियां पहनते थे। तो इतना त्याग उन्होंने किया है, त्याग तपस्या के बल के ऊपर ये पूरा यज्ञ खड़ा हुआ है आज। और ये कौन है, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी। अभी मास चल रहा है मनमोहिनी दीदी का, और मनमोहिनी दीदी के जो बहुत ही ज्यादा जो गुण है, परखने की शक्ति है ना। उनका जो जीवन का मंत्र था, अब घर जाना है। और दीदी भी बहुत संपन्न परिवार के थे उस समय के, जो जसलोक हॉस्पिटल अभी बॉम्बे में है तो उस परिवार को बिलोंग करते हैं, जो शील दादी हैं, आपने सुना होगा, जो बॉम्बे के गवर्नर बाबा कहते थे शील दादी को। तो उनके लौकिक बहन दीदी और शील दादी दोनों लौकिक बहन हुआ करते थे। और मनमोहिनी दीदी माता थे, उनकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर बाबा जब ब्रह्मा बाबा को देखा, उनको साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और दीदी हमेशा ये कहते थे कि मैं अभी इस जन्म में ब्रह्मा बाबा के साथ इतने नजदीक के संबंध में हूं, तो मैं भविष्य में जाकर के श्री कृष्ण की माँ बनूंगी, ऐसे कहते थे। तो भविष्य हो सकता है ऐसा। और जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, फिर उसके बाद प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी को संस्था के प्रशासिका के रूप में निमित्त बनाया। लेकिन मनमोहिनी दीदी इतने महान है कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तब से बाबा ने कहा कि मनमोहिनी दीदी को आप यहाँ रहेंगे, मधुबन में रह करके यहाँ कारोबार संभालेंगे। तो ब्रह्मा बाबा के सारा कारोबार मनमोहिनी दीदी किया करते थे, और उनके घुटनों में दर्द हुआ करता था। घुटनों में जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया तो उनके इसमें घुटनों में दर्द हुआ करता था, और फिर भी ब्रह्मा बाबा उनको भगाते थे, ये लेके आओ, वो करो, ये वहां जाओ, ये करो। तो ब्रह्मा बाबा को ये था कि ये, और मनमोहिनी दीदी कभी कुछ नहीं कहते थे कि ब्रह्मा बाबा जो कहे, बाप दादा जो कहे वो सब कुछ करते थे। कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे, मुझे मेरे घुटनों में दर्द है, कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे। और बाबा हमेशा कहते थे कि तुम्हारे घुटनों का मालिश मैं बैठ के करूंगा, तो बहुत प्यार से। तो वो ऐसा नहीं कि बाबा को कि हाँ बच्ची के घुटनों में दर्द है तो उसको सेवा कम करना है, नहीं, उससे और ज्यादा, जैसे हर एक कण कण में जैसे शक्ति, यज्ञ सेवा से तन में जो शक्ति मिलती है, तंदुरुस्ती आती है यज्ञ सेवा से वो बाबा जानते थे, तो इसीलिए दर्द होने के बावजूद भी दीदी को ये सारी सेवा की जवाबदारी दिया करते थे और कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे मनमोहिनी दीदी। और जब रमा बाबा अव्यक्त हुए और उस समय प्रकाशमणि दादी यहाँ मधुबन में थे और मनमोहिनी दीदी को अलाहाबाद मेला कुंभ मेला था वहाँ, तो वहाँ बाबा ने दीदी को भेजा था और दीदी को बहुत फील हुआ, देखो जब मैं मधुबन में नहीं थी तब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े, लेकिन फिर ड्रामा तो ड्रामा है, तो फिर आए। और फिर जब प्रकाशमणि दादी को संस्था के प्रशासिका के रूप में, भले जॉइंट थे लेकिन फिर भी दादी प्रकाशमणि को फिर मुरली पढ़ने की जवाबदारी या सारे सारे जो कारोबार की जवाबदारी प्रकाशमणि दादी को ज्यादा था, लेकिन दीदी उसको एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी बात है, आप मान सकते हैं 350 दादियां जो इतने सारी दादियां हैं और सभी एक समान, क्योंकि लगभग एक समय पर सभी यज्ञ में आए हुए थे, है ना, और सभी एक जैसे एक समान थे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उन दादियों में से एक दादी को चुना और उनको प्रशासिका के रूप में ब्रह्मा बाबा के जगह पर बिठाया और बाकी दादियों को कोई भी जलसी फील नहीं, मुझे क्यों नहीं, प्रकाशमणि दादी को ही क्यों है, कोई भी प्रश्न नहीं उठा। अभी आजकल की दुनिया में ऐसा होता है तो बहुत हंगामा मच जाए, है ना, तो लेकिन दादियों की जो तपस्या का बल है, धारणा का बल है, तो उसके बाबा ने जो कहा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। तो खास करके मनमोहिनी दीदी का जो त्याग था, तो मधुबन में होते हुए भी तो प्रकाशमणि दादी को वो जगह बाबा ने दिया, दीदी ने कहा ठीक है बाबा, जी बाबा। और जब प्रकाशमणि दादी मुरली सुनाते थे, स्टूडेंट के रूप में दीदी सामने बैठते थे, आप सोच सकते हैं कि मैंने कोई भी ईगो नहीं, कोई भी अहम भाव नहीं, मैं दीदी पढ़ रहे, दादी पढ़ रहे तो मैं क्यों सुनूं, कोई ऐसी भावना नहीं। नोटबुक और पेन पकड़ करके हर रोज 6:30 से पहले क्लास में आकर के बैठते थे और नोट्स लेते थे। दीदी कभी भी क्लास नहीं कराते थे, मुरली नहीं पढ़ते थे क्लास में, लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि वो बहुत सारे प्रश्न उत्तर, जैसे उन दिनों में बैडमिंटन के खेलना कहते थे, प्रश्न पूछते थे और उत्तर, उसको बैडमिंटन खेलना कहते थे, तो बैडमिंटन खेलने में बहुत होशियार थे। उस दिन की मुरली में मुरली के जो प्रश्न, आज भी प्रश्न उत्तर हुआ ना सुबह, तो दीदी तुरंत तुरंत प्रश्न उठा निकाल देते थे, सुनते सुनते निकाल देते थे। और फिर जो भी ग्रुप्स मिलते थे तो उनके साथ ये बैडमिंटन दीदी खेलते थे। और फिर ये कौन है, विश्व किशोर भाव, है ना, यज्ञ के पिल्लर कह सकते हैं, त्यागी तपस्वी आत्मा हम कह सकते हैं। बहुत ये बाबा के लौकिक बड़े भाई के सुपुत्र थे, ब्रह्मा बाबा के जो बड़े भाई है उनके पुत्र थे विश्व किशोर भाव। और जब कलकत्ता में बिजनेस करते थे तो बाबा के साथ साथ वहां भाव भी रहते थे, उनके युगल संतरी दादी, तो वो दोनों साथ में उनके घर में ही रहा करते थे। और इनकी विशेषता तो बहुत अपरंपार है कि सभी के सामने ब्रह्मा बाबा इनको भाव को शिक्षाएं देते थे या फिर डांट खिलाते, डांटते थे, लेकिन भाव चुपचाप, जैसे कहते हैं ना, अगर बहू को कुछ सिखाना हो तो बेटी को डांटो, है ना, तो बेटी को डांटो बहू समझ जाती है। तो अब अगर किसी को भी शिक्षाएं देनी है तो बाबा क्या करते थे, भाव को डांटते थे, तो फिर दूसरे लोग समझ जाते थे, ये जो शिक्षा है, ये जो डांट है, वो मेरे लिए है। लेकिन बाहु कभी भी ये नहीं कहते थे बाबा को, बाबा मैंने तो ये गलती किया ही नहीं है, तो फिर भी आप मुझे क्यों डांट रहे हो, वो भी सबके सामने क्यों डांट रहे हो। तो बहुत फीलिंग आ जाता है ना, कि आजकल तो हम कहते हैं कि अगर आपको डांटना है मुझे अकेले में बुला करके डांटो ना, तो क्यों सबके सामने डांटते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत फीलिंग में आ जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन भाव उनको पता था कि बाबा जो मुझे डांट रहे हैं उनको प्यार है, अधिकार जिनके ऊपर होता है उनके प्रति ही प्यार होता है ना। तो बाबा हमेशा भाव को डांटते थे, और जो भी खरीदारी का कारोबार था बाहु भाव देखते थे। जब यहाँ भी पूरा यज्ञ, जब यहाँ मधुबन या माउंट अबू शिफ्ट हुआ, तो उसमें भी भाव का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि यहाँ पहले आकर के सब कुछ प्रबंध करके फिर बुलाया और सब कुछ यहाँ का प्रबंध करना, ये बहुत बड़ा योगदान भाव का रहा है। और इनका अंतिम समय बहुत ही स्पेशल रहा है। आपने वो एक वो फोटो देखा होगा ना, एक अम्बेसडर गाड़ी है, और अम्बेसडर गाड़ी के सामने ब्रह्मा बाबा है, भाऊ है, और फिर रमेश भाई है, साथ में है। और वो बहुत आइकॉनिक पिक्चर है, बहुत यादगार वाला वो पिक्चर है। क्यों? क्योंकि भाऊ को अचानक कुछ हेल्थ इश्यूज उनको आया, कुछ बीमारी आई, तो बाबा ने कहा कि आप बॉम्बे जाकर के चेकअप कराना। तो संतरी दादी और भाव दोनों गए बॉम्बे, और रमेश भाई के घर में ही रुके और सारा टेस्ट कराया, और डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ऑपरेशन कराना जरूरी है। तो लेकिन अभी मेरे पास, डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोई कहीं जाना है, एक हफ्ते के बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो भाव ने सोचा कि चलो मैं एक हफ्ता में करूंगा क्या, बॉम्बे में रह करके बाबा के पास चलते हैं मधुबन, फिर एक हफ्ते के बाद वापस बॉम्बे आएंगे। तो फिर सभी तीनों, रमेश भाई, भाव और संतरी दादी, तीनों मधुबन आए और एक हफ्ता पूरा बाबा के साथ रहे, और कारोबार की बातें चलती रही। और क्योंकि हैंडिंग ओवर की बात होता है ना, कि इतना सारा कारोबार भाव करते थे, तो फिर रमेश भाई को हैंडओवर, तो ऐसे सूक्ष्म रूप से वो थोड़ा सा डिस्कशन होता था हर रोज भोजन पे बाबा के साथ। तो एक हफ्ता बीत गया, फिर उसके बाद दोपहर को एक दिन भोजन के बाद फिर निकलना था, तो टैक्सी आई पांडव भवन के आंगन में, वो अम्बेसडर गाड़ी आई, सब कुछ लगेज लोड किया, लोड करने के बाद अभी लेना निकलना था। और ब्रह्मा बाबा ने रमेश भाई को कहा कि चंद्रहास भाई को बुलाओ, क्योंकि वो 2-3 बजा होगा दोपहर का, तो रेस्ट का समय है, तो चंद्रहास भाई भी, दादा भी वो रेस्ट कर रहे होंगे। तो रमेश भाई ने कहा बाबा वो तो अभी रेस्ट कर रहे होंगे, कि नहीं बुलाओ, क्योंकि चंद्रहास दादा उन दिनों सारे टेक्निकल काम करते थे, साउंड का, ये सारे जो बातें, जो ग्रामोफोन का सारा कुछ वो देखते थे, और ये फोटो वाला, तो उनके पास कैमरा था। तो बोलो चंद्रहास भाई को कि वो कैमरा लेके आए, फोटो निकालना है। रमेश भाई को तो आश्चर्य लगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे फोटो नहीं निकालो मेरा, हमेशा शिव बाबा को याद करो, मेरा फोटो क्यों निकालना है, नहीं शिव बाबा को याद करो। लेकिन अभी तो उल्टा हो गया और ही बाबा सामने से बुला रहे हैं, फोटो निकालो, बुलाओ, कैमरा ले आओ। तो फिर चंद्रहास दादा को ले आए और ये फोटो निकाला, और फिर सभी ये तीनों निकले। जब ट्रेन में जा रहे थे, और रमेश भाई ने पूछा, क्योंकि उनके मन में वो प्रश्न था, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्यों किया, फोटो क्यों निकलवाया। तो भाऊ को पूछा, भाऊ क्यों ऐसा क्यों किया बाबा ने, कि मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा कि फोटो निकाला। तो भाव ने कहा कि बाबा को पता है कि ये अंतिम विदाई है, मैं वापस मधुबन नहीं आऊंगा। तो भाव को पता था कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा को पता था ये बच्चा वापस मधुबन नहीं आएगा, वो क्यों ऐसा, तो रमेश भाई ने पूछा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है? तो भाव ने कहा कि मैंने ही अर्जी डाली है बाबा के साथ पास। तो रमेश भाई ने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो भाव ने कहा कि देखो अभी यज्ञ इतना विस्तार हो रहा है और नए नए पढ़े लिखे बच्चे आ रहे यज्ञ में। दिल्ली से रमेश भाई, दिल्ली से जगदीश भाई जी, ब्रिजभवन भाई ज्ञान में चल रहे थे, जो बहुत ही निश्चय वाले और अनन्य बच्चे थे, और बॉम्बे से निर्वैर भाई और रमेश भाई थे। इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बाबा के बच्चे आ रहे हैं, वो यज्ञ वो लोग संभाले, तो इसलिए बाबा को मैंने अर्जी डाली, बाबा मुझे अभी सत्युग में एडवांस पार्टी में भेजो, मैं वहां जाकर के सारा आपके लिए प्रबंध करूंगा जाके, क्योंकि यहां भी प्रबंध करते थे, वहां सत्युग के लिए मैं जाकर के आपके लिए प्रबंध करूंगा। तो बाबा ने उसको स्वीकारा है, तो इसीलिए बाबा को पता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। बाबा को भले पता है, लेकिन खुद को जब पता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो एकदम कोई भी भावुक नहीं थे, उनको पता है कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा। इतनी स्थिरता, इतने बैलेंस्ड माइंड भाव का था कि वो गए और फिर ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन उसी समय, ऑपरेशन होते होते ऑपरेशन टेबल पर उनको शरीर छोड़ना था। भाव का तो संकल्प यही था कि ऑपरेशन टेबल पर ही मैं शरीर छोड़ दूं। तो बाबा ने ऐसा नहीं किया कि फिर बाद में एक हफ्ते के बाद आत्मा ने शरीर छोड़ा। फिर जब भोग लग और जब शरीर छोड़ा, तो रमेश भाई ने बाबा को बोला, बाबा शरीर को वापस लेके आए मधुबन? तो बाबा ने कहा नहीं, देखो इतना प्यार भाव के प्रति बाबा का, इतना अटूट प्यार, अनन्य बच्चा, इतना प्यार था, फिर भी इतने नष्ट मोह। शरीर को ले आ सकते थे ना, बाबा बोल सकते थे कि चलो लेके आओ, मधुबन में उनका अंतिम संस्कार करेंगे। बाबा ने नहीं, शरीर में, शरीर ही तो है ना, तो वहां ही बॉम्बे में ही अंतिम संस्कार करना। तो वहां अंतिम संस्कार के बाद जब भोग लगा, तो वहां ही भोग लगा, और भोग में ये संदेश आया कि हाँ भाव तो ऑपरेशन टेबल पर ही शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन बाबा ने एक हफ्ता फिर और रोक करके रखा आत्मा का, आत्मा को, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स पर वो फिर इल्जाम ना लगे ना कि इन डॉक्टर्स ने अच्छा काम नहीं किया, इनके कारण से शरीर छोड़ा, इनके ऊपर इल्जाम नहीं आना लाना चाहते थे। तो इसीलिए एक हफ्ते के बाद बाबा ने उस आत्मा को वतन में ले लिया। देखो ऐसे ऐसी महान आत्माएं, और ये गर्व महसूस होता है, ऐसी महान आत्माएं हमारे पूर्वज है ना, उस कुल के हैं हम जो ब्राह्मण कुल के हैं, और हमारे पूर्वज इतने महान आत्माएं, त्यागी तपस्वी है। और लास्ट एक दादी का करेंगे और पूरा करेंगे, ठीक है? ये कौन सी दादी है पता है? संतरी दादी, जो विश्व किशोर भाव के लौकिक धर्मपत्नी। और संतरी दादी का नाम कुछ और ही था, लेकिन उनका चेहरा राउंड था ना, और जैसे संतरे जैसे लाल लाल था, तो इसीलिए ब्रह्म बाबा हमेशा उनको संतरु बच्ची कहते थे। और संतरी दादी की विशेषता ये है कि वो संदेशी थे, पर्सनल संदेशी, ब्रह्मा बाबा के पर्सनल संदेशी थे, कि ब्रह्मा बाबा को कुछ भी बाबा से पूछना होता था कि दादी को कहते थे कि बाबा से संदेश लेके आओ। बहुत कॉन्फिडेंशियल, जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती थी तो वो सारा संदेश संतरी दादी ले आते थे। और ये आत्मा इतनी महान है, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और फिर ये सोचने लगे किसके तन में अभी बाबा की पदरामणी होगी, तो दो तीन संदेशी थे, तो जिनके था कि हाँ संतरी दादी भी है, गुलजार दादी भी है, रुद्र पुष्प दादी भी संदेशी थे, तो ये सारे दादियां थी, तो किसके तन में आए? तो सबसे पहला प्रेफरेंस संतरी दादी का था, क्योंकि वो बहुत ही नजदीक के थे, बहुत कॉन्फिडेंशियल थे बाबा के साथ, बहुत नजदीक के थे। तो संतरी दादी ने कहा कि कि नहीं मैं इनका त्याग देखिए, कि वो कह सकते थे कि बाबा मेरे तन में आए, है ना। लेकिन दादी ने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंशियल बातें मुझे पता है यज्ञ की और बाबा की। अगर बाबा मेरे तन में आते हैं किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको उनको लगता है कि संतरी को तो ऐसा ऑलरेडी पता है ना ये सब बातें, तो इसलिए बोल रही है, तो उनको विश्वास नहीं बैठेगा, तो इसीलिए बाबा नहीं मेरे तन में नहीं। इनका त्याग देखिए कि हर मतलब इतने सारे आत्माओं के त्याग के ऊपर ये यज्ञ। जब बाप दादा की पदरामणि हुई गुलजा दादी के तन में, और फिर बाबा ने ये भी कहा कि यज्ञ जो खड़ा है बहुत सारे आत्माओं के त्याग के ऊपर ये खड़ा है, तो इसलिए यज्ञ में इतनी ताकत है। और संतरी दादी पहले से ही मामा बाबा के घर में ही रहते थे, दोनों भाऊ और संतरी दादी दोनों। जब ब्रह्मा बाबा का जो पूरा पाठ बदला कलकत्ता में, तो क्षण में दोनों को संतरी दादी और भाऊ को निश्चय बैठा और सब कुछ वहां ही त्याग करके फिर आ गए। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, आप दुकान संभालो, कोई बात नहीं। तो दोनों ने कहा कि नहीं बाबा, आप जहां हैं हम वहां हैं। तो ऐसे दोनों युगल बाबा के साथ साथ यज्ञ में आए और सब कुछ त्याग करते हुए अपना जीवन इसमें व्यतीत किया। फिर उसके बाद बाबा के बाबा अव्यक्त जब हुए, संतरी दादी फिर कलकत्ता गए निर्बल शांता दादी के साथ साथ। संतरी दादी कलकत्ता में रहे कुछ साल, फिर बाद में एक दिन संतरी दादी ने निर्बल शांता दादी को कहा, निर्बल शांता दादी मधुबन आ रहे थे, तो संतरी दादी ने कहा कि नहीं मुझे भी आना है आपके साथ। कुछ दोनों ही थे कलकत्ता के सेंटर पे, दोनों एक साथ नहीं निकलते थे सेंटर को छोड़ करके। एक बार निर्बल शांता दादी आते थे, एक बार संतरी दादी आते थे। लेकिन संतरी दादी ने कहा कि नहीं मुझे तो आना ही है आपके साथ। जिद किया कि ठीक है फिर चलो दोनों साथ चलेंगे मधुबन। और फिर जब मधुबन में रहे, फिर उस दिन जब गुरुवार, दो तीन दिन के बाद जब गुरुवार आया, तो गुरुवार के सुबह सुबह अमृत वेले में योग में बैठे बैठे आत्मा ने शरीर मधुबन में आत्मा शरीर छोड़ी। तो उनको पता था, कहीं आत्मा को कहीं ना कहीं पता था कि मेरा अभी अंतिम समय अंतिम घड़ी नजदीक है, तो इसलिए मुझे मधुबन में शरीर छोड़ना है। तो वो आत्मा मधुबन में आकर के शरीर छोड़ा। ठीक है, ओम शांति।